ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद दूसरा अध्याय, अध्याय का नाम है गजेंद्र का संकट, श्लोक संख्या 32। नामामि ज्ञात्य आतुरं गजः कुता करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम् राहेण पाशेन विधातुरावृतो अपि अहं च दमयामि परं परायणम्। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की ना नहीं माम मुझको इमे ये सब ज्ञात्य मित्र तथा संबंधी अन्य हाथी आतुरम मेरे दुख में गजह हाथी कुतः कैसे करिण्या मेरी पत्नियां परवंती समर्थ हैं मोचितुम इस संकट में स्थिति से उद्धार करने में। ग्राहेणा खड़ियाल से पाशेना फंदे से विधातु भाग्य के आवृतः बंदी अपि यद्यपि मैं ऐसी स्थिति में हूँ अहम मैं च भी दम उस भगवान की यामी शरण में जाता हूँ परम जो दिव्य है परायणम जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे सम्मानित देवताओं की भी आश्रय है। कृपया तो मेरे पिछले अनुवाद दोहराइए। जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया, अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हरेक को यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। तात्पर्य, यह संसार परम परम यत विपदम रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि जिसमें पग पग पर संकट है। मूर्ख झूठे ही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इससे पग पग पर हर क्षण संकट है, इसमें पग पग पर और हर क्षण संकट है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान सुंदर कार हो तो उसका जीवन पूर्ण है, पाश्चात्य जगत में विशेषतया अमेरिका में अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु जो ही वह सड़क पर कार चलाता है तो उसे संकट बना रहता है, क्योंकि वह किसी भी क्षण दुर्घटना में मर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में यह सोचते हैं कि यह संसार अत्यंत सुखमय स्थान है तो यह हमारा अज्ञान है। असली ज्ञान यह है कि यह भौतिक जगत संकट से पूर्ण है। हम वहीं तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु जब तक भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से नहीं बचा लेते, तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम 7:9-19, बालस्य नेहा शरणम पित्रो नृसिंह नार्तस्य चागदम उदरंति मजतो न तप्तस्य तप्रति वर्धिये इहाज शेषस तावद् विभूतानुभृतां तदुपेक्षितानां। भले ही हम सुखी रहने या इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के कितने ही साधन क्यों न ढूंढ ले, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को भगवान ने पुष्टि नहीं मिल जाती, वे हमें कभी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग भगवान की शरण लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं, वे मूढ़ हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अधम लोग कृष्ण महानामृत ग्रहण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कृष्ण की रक्षा के बिना ही वे अपनी रक्षा कर लेंगे। यह उनकी भूल है। गजेंद्र का निर्णय सही था। ऐसी संकटमय स्थिति में उसने भगवान की शरण ग्रहण की। ओम अज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामी हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशवादिने।
हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। जो प्रसंग है हम सबके लिए बहुत शिक्षाप्रद है। श्रीमद् भागवतम अ बुक ऑफ केस स्टडीज, अलग अलग केस स्टडीज है। भगवदगीता में सिद्धांत बताए जाते हैं, और पूरा सिद्धांत जो अंतिम सार है भगवदगीता का, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, कि सब धर्मों को छोड़ के सब प्रकार की शरणों को छोड़ के मेरी शरण एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, ये सिद्धांत है। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि ये सिद्धांत कैसे प्रदर्शित होता है। भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं करते हैं श्रीमद् भागवतम में, उनके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि किस परिस्थिति में भक्त लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो गजेंद्र पे संकट आया, और उस संकट में गजेंद्र आज हमें सिखाएंगे कि भगवान की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए और कैसे ग्रहण करनी चाहिए। तो सभी साधकों के लिए ये पूरा प्रसंग बहुत शिक्षाप्रद है। तो आइए आपको ले चलते हैं त्रिकूट पर्वत की घाटी ऋतुमत में। ये रिद्धुनाथ एक समझ लीजिए मॉडर्न टाइम्स में एक पिकनिक पार्क है, वाटर स्पोर्ट्स, त्रिकूट पर्वत में बहुत ऊंचा पहाड़ है ये, कितनी ऊंचाई है 80,000 मील और बिल्कुल अचिंत्य। और ऋतुमत में गार्डन में ये वरुण जी का गार्डन है, लेकिन यहाँ पे सभी देवता लोग और उच्च लोगों के लिए वासी आते हैं अपना आनंद उठाने के लिए। अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, फल हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, झीले हैं, झरने हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, सुखमय वातावरण है। और ऐसे सुखमय वातावरण में उस जंगल के राजा गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ, परिवार के साथ बड़ी मस्त होकर रास्ते में पेड़ पौधों को खाड़ते हुए मस्ती में आ रहे हैं। अब समझ लीजिए एक संडे का दिन है, चलो पूरे परिवार के साथ निकले हैं पिकनिक पे, मॉडर्न स्पोर्ट्स करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मस्ती मारने जा रहे हैं आराम से। और जैसे जैसे उनकी सुगंध पाके ही कुछ जानवर डर के भाग रहे हैं, कुछ आदरपूर्वक चुपचाप खड़े हुए उनको रास्ता दे रहे हैं। तो ऐसे आराम से टहलते हुए पहुंचे झील के पास और थोड़ी सी थकावट हो रही थी, चलो रिफ्रेश होते हैं, वो कूद गए अंदर और खूब नहाए, एकदम फ्रेश हो गए। फिर उन्होंने बोला मेरा कुछ कर्तव्य है परिवार वालों को भी आनंद देना, तो अपनी सूंड से पानी उठा उठा के अपने पत्नियों पे बच्चों पे डाल रहे हैं और खूब इसमें आनंद दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, फर्स्ट क्लास पिकनिक चल रहा है एकदम आनंद में, लेकिन तभी अचानक क्लाइमेक्स आता है और एकदम क्या होता है, घड़ियाल आता है। और घड़ियाल किसको पकड़ता है, इसी राजा को पकड़ता है और जोर से पकड़ लेता है। और अब घड़ियाल पानी का पशु है और ये हाथी जमीन का, पृथ्वी का, तो तब से ये संघर्ष शुरू हो जाता है। और राजा के साथ, गजेंद्र के साथ जो उसके दूसरे हाथी थे, वो उसको पीछे से खींच के उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं छुड़ा पाते। और ये युद्ध 1,000 वर्ष तक चलता है, 1,000 वर्ष तक गजेंद्र के पांव से खून निकल रहा है और उसकी सारी शक्ति, उसका मनोबल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और घड़ियाल की शक्ति बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में अब उसके साथ है उसकी पत्नी, अब उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे, अब उसको लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में फिर वो सोचता है, एक निर्णय लेता है कि अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। अभी पिछले भगवदगीता मैराथन में मैं करना चाहता हूं, एक अपने डोनर से मिलने गए, वो थोड़ा मानसिक स्थिति में ठीक नहीं चल रहे थे। वो कह रहे थे कि अक्सर लोग शरण लेते हैं, जो भगवान की शरण लेते हैं मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं जब, और जब बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं, थके हुए लोगों के लिए, निराश लोगों के लिए ये भगवान की शरण है। तो तभी कहना चाहते हैं, उनको श्लोक दिखाने लगे थे, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृत अर्जुना। जरूरी नहीं है कि मानसिक रूप से कमजोर लोग ही भगवान की शरण लेते हैं, जो सुकृति, जो जिनकी सुकृति इकट्ठी हुई है वही भगवान की शरण ले सकते हैं। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में क्या थे, राजा इंद्रदुम्न बहुत बड़े भक्त थे, शाप मिला था उनको इसलिए वो हाथी की योनि में आए थे। लेकिन भगवान अपने भक्त के द्वारा की सेवा कभी भूलते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको याद आया कि हाँ मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए, तो उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। और आज इसके श्लोक में क्या बता रहे हैं, नामा इने ज्ञाते आतुरम गजा, आतुरम आज जो मैं संकट में हूं मुझमें ज्ञाते, ये जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं, ज्ञाते मीन्स मेरे नोन, मेरे जान पहचान के, ये सब हाथी, ये पत्नियां, मेरे परिवार वाले, ये कुत्ता और मेरी कुतह, मेरी करणिया, मेरी पत्नियां प्रभवंती, इनमें कोई सक्षमता नहीं है मोचितो मेरा उद्धार करने के लिए। जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं, मेरे मंत्री, मेरे साथी, मेरे पार्षद, मेरी पत्नियां, इनमें इसकी किसी में क्षमता नहीं है मेरे को इस संकट से निकाल दे। ग्राहेन पाशेन विधातु आवृतो, विधातु विधाता की इच्छा से, भाग्य के द्वारा मैं इस समय ग्राहेन, इस घड़ियाल ने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, मैं कैद हूं। अपि अहम चतम यामी परम परायणम, ऐसी स्थिति में मैं उसकी शरण ग्रहण करता हूं जो परम है, दिव्य है, और परायणम जिसकी बड़ी बड़ी विभूतियां भी, महान लोग भी जिसकी शरण ग्रहण करते हैं। तो गजेंद्र के प्रसंग में देखते हैं कि हालांकि वो पूर्ण रूप से सुख की आशा से गए थे उस झील में, लेकिन ये भौतिक जगत की प्रकृति श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं पदम पदम यत विपदम अचानक, और जितनी मात्रा में हम इसमें आनंद ढूंढने की उम्मीद रखते हैं और अचानक कुछ हो जाता है उतनी ज्यादा हमें निराशा होती है। ये हम सबका अनुभव है। जैसे कुछ साल पहले एक माता जी थी, उनको न्यू ईयर ईव 1 जनवरी को चारों तरफ से फोन आ रहे थे, ग्रीटिंग आ रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, और वो पार्टी में जाने वाले थे। अपने घर में फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से उतर से धार सिंचे कर गई और मोबाइल फोन पे बात करते वहां से हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे, वहां उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है कभी भी। मुझे सर्दी प्रॉब्लम बता रहे थे कि एक व्यक्ति अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा था, डिनर कर रहे थे, साथ में पत्नी बैठी है और सब खुशी का वातावरण है, पत्नी अचानक कुर्सी से गिर गई और वहीं पे फिनिश। कुछ भी हो सकता है, भौतिक जगत इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना। पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पे खतरा है। ये वास्तविक ज्ञान है, लेकिन कोई ऐसे स्थान पे भी जिससे पद पद पे खतरा है, कोई बोले कैसे हो, बोला बहुत मस्ती में हूं, मैं आनंद में हूं, तो प्रभा लिख रहे हैं कोई मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। भागवतम के 11वें स्कंद में 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसका अनुवाद ऐसा है, भगवान उद्धव को बता रहे हैं, मृत्यु अच्छी नहीं लगती और क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाए जाने वाले दंडित व्यक्ति के समान है। हमें से हर व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जिसको फांसी की सजा मिली हुई है और फांसी के लिए ले जा रहे हैं, तो फिर भौतिक वस्तुओं या उनसे प्राप्त तृप्ति से लोगों को कौन सा संभव सुख मिल सकता है। वी ऑल आर कंडेम्ड टू डेथ, टू बी हैंग टिल डेथ, सबको सजा मिली हुई है और हमें ऐसी स्थिति है कि जैसे हमें फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं कि जब किसी को फांसी देनी होती है तो फांसी से पहले उसको बहुत बढ़िया फिश खिलाई जाती है। रोज तो जब तक वो जेल में है सूखी ब्रेड और पानी वाली दाल मिलती है, वो तो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आके जेल के अधिकारी पूछेंगे और क्या क्या अच्छा लगता है खाने में बताओ, तो समझ लो कल फांसी है। कि आपको फ्रूट क्यों अच्छी लगती है, गुलाब जामुन रसगुल्ला क्या खाना चाहोगे, चाइनीज अच्छा लगता है या मुगलई अच्छा लगता है बताओ, तो समझ लो भैया कल का दिन आखिरी दिन है। तो क्या कहना आपका, वो व्यक्ति बता पाएगा हाँ मेरे लिए ये बनाओ, शाही पनीर बनाओ, ये बनाओ, बनाएगा वो उसको तो कई घंटी बोले वो सूखी ब्रेड ज्यादा अच्छी है वही करते रहो। तो ये हम सबकी स्थिति है। तो एक मूर्ख व्यक्ति ही इस संसार में आनंद उठा सकता है या कंफर्टेबल या शांत रह सकता है। एक व्यक्ति समझ लीजिए आराम से सोफा पे बैठा है और एक सामने कोबरा से खड़ा है और कभी भी उसको डस सकता है और आराम से बैठ के टीवी देख रहा है, संभव है? कौन करेगा ऐसा? बिल्कुल क्रेजी मूर्ख व्यक्ति जिसको पता ही नहीं कि ये सांप है ये डसता है, वही कर सकता है ऐसा। तो इस संसार में सुखी रहना और सुख की उम्मीद रखना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और जो भी एक सज्जन व्यक्ति है, 1927 में भक्ति सिद्धांत सेवक ठाकुर महाराज ने बोला था, This material world is not a fit place to stay for a gentleman. अब तो पता नहीं लगभग 100 साल होने वाले हैं, अब तो हालत और खराब हो गई। तो इस संसार में किसी भी तरह की खुशी की उम्मीद रखना यह मूर्खता है, अज्ञानता का लक्षण है, क्योंकि पदम पदम यत विपदम। गजेंद्र इसका उदाहरण है, साक्षात फर्स्ट क्लास उसका पिकनिक चल रहा था, अचानक घड़ियाल आ गया और उसके पांव को पकड़ लिया। 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया, ना ही उसके सगे संबंधी पत्नी साथी इत्यादि। तो कह रहा है ना माम इमे ज्ञाते आतुरम गजा। तो ये देखा जाए जो गजेंद्र की स्थिति है, सब कुछ करने के बाद भी उसको अब लगा मेरा बल, मेरा धन, मेरा ऐश्वर्य, मेरे साथीगण मुझे नहीं बचा सकते, बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब उसको लगा अब मरने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। उस स्थिति को देखिए कैसा लग रहा होगा। ये कैसी स्थिति है जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहेंगे कि हम कभी ऐसी स्थिति में हों कि हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, हमारे घर वाले मित्र हमारे सामने खड़े हैं असहाय, रो रहे हैं, परेशान है, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा और हम अकेले हैं और मृत्यु एकदम सामने खड़ी है, बिल्कुल निराशाजनक स्थिति। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक सिद्धांत को समझे तो यही निराशाजनक स्थिति सबसे ज्यादा आशाजनक स्थिति है ना, क्योंकि इसी निराशाजनक स्थिति में गजेंद्र ने क्या किया, भगवान की शरण ली, श्री राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ परदेश सुभद्रा महारानी की। तो ये आध्यात्मिक सिद्धांत हमें समझना चाहिए कि भौतिक रूप से जो पूर्ण रूप से निराशाजनक सिद्धांत स्थिति है वो हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से सबसे बड़ी आशाजनक स्थिति है। और जब तक गजेंद्र को अपने पत्नियों से अपने साथियों से आशा थी तब तक वो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में था, क्योंकि किन लोगों से आशा कर रहा है जो कुछ भी शरण प्रदान नहीं कर सकते, तो होपलेस है। लेकिन जब उसको मालूम चला कि ये मुझे शरण नहीं ले सकते तब उसने पूर्ण उसे भगवान की शरण ग्रहण की, तो ये असली होपफुल सिचुएशन है। इस संसार में अधिकांशतः हम लोग को बड़ी उम्मीद है कि नहीं नहीं अब तो नई साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई है, अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, अब तो अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर हुआ गए हैं, अब तो और क्या है, नए नए पीवीआर खुल गए हैं, हमारे पंजाबी बाग में नया एक सामने अच्छा फूड कोर्ट खुला, अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, नई मूवी रिलीज हो रही है, नया हीरो है, नया क्रिकेटर है, बहुत सी उम्मीदें हैं हमें कि ये सब चीजें हमें सुख प्रदान कर देंगी, है ना। जब तक ऐसी उम्मीदें हमारे हृदय में हैं हम बहुत ही होपलेस सिचुएशन में हैं। और जब हमें पूर्ण रूप से ये कन्विक्शन हो गया है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं, जो मेरी असली जरूरत है ये उसको पूरा नहीं कर सकते, किसी प्रकार का सुख मुझे आनंद प्रदान नहीं कर सकता, जब ये बात हम अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तब हम वास्तविक ज्ञान में हैं और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आशाजनक स्थिति है। गजेंद्र जी ये सोच रहा था अपने परिवार के साथ हूं, मदमस्त था एकदम, उसको लगता था कि ये सब मेरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे, जैसे कि भागवतम के दूसरे स्कंध में शब्द को स्वामी बताते हैं, देह आप्त तनात्रेदीषु आत्मसैनेषु असतपि तेषां प्रमतो निर्धनम पश्चन अपि न पश्यति। देह मेरा शरीर बलवान, आप्त मेरे बच्चे, कलात्रेदीषु मेरी पत्नियां, मेरा धन, मेरा प्रॉपर्टी इत्यादि, आत्मसैनेषु ये मेरे सैनिक हैं, लेकिन ये सैनिक खुद क्या असत अपि, बेचारे सैनिक खुद ही मरने वाले हैं, खुद ही परेशान है, तो ये क्या किसी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो जब ये बातें हम समझ जाते हैं तब हम वास्तविक ज्ञान में हैं, तब हम वास्तविक आशाजनक स्थिति में हैं, और जब तक इनसे हम उम्मीद बना के रखेंगे हम बहुत निराशाजनक स्थिति में हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जो मंदिर में ब्रह्मचारी जन का अनुभव होगा, जब हम पूर्ण रूप से मंदिर में ज्वाइन करने वाले होते हैं तो ये डर होता है कि क्या होगा, है ना, घर में तो बहुत सुरक्षित लगता है, दवाई है, खाना है, कपड़े हैं, जो मर्जी करो जैसे करो, तो मंदिर में आएंगे तो पता नहीं, अभी तो मैं स्वस्थ हूं, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, कोई ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, या माँ है, भाई है, बहने हैं, मंदिर में कौन देखेगा ध्यान। और जब हम ज्वाइन करने वाले थे तो मुझे एक वरिष्ठ भक्त ने बताया, भाई बताओ बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता यहाँ पे, तो और एंग्जाइटी बढ़ जाती है ना। तब हमें क्या लगता है, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस ही मेरे को रक्षा प्रदान करेगा, है ना। लेकिन भागवतम बता रहा है और गजेंद्र का उदाहरण है, कोई रक्षा नहीं प्रदान कर पाया, और ये गजेंद्र बोल रहा है ना, माम इन्हें ज्ञाते, जितने मेरे नोन है बहुत जान पहचान है मेरी, कहीं फोन करूंगा काम हो जाएगा, लेकिन जब असली काम आता है क्राइसिस में सबकी औकात पता चल जाती है, जब सबसे बड़ा संकट आता है छोटे छोटे क्राइसिस में हाँ मदद हो जाएगी, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स में मदद कर देंगे, लेकिन जब असली समस्या आएगी मृत्यु, कोई हमें नहीं बचा पाएगा कोई भी। तो इस संसार में हम लोग संबंध बनाते भी कैसे हैं? आप देखिए, जो सैनिक, जिनको हम सैनिक समझते हैं कि मेरा सैनिक है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मेरी पोजीशन, मेरा यश, पत्नियां इत्यादि, सब मेरे सैनिक हैं। सैनिक का क्या काम होता है? सुरक्षा प्रदान करे, हमारे दर्द को दूर करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो यहां पे हर व्यक्ति जो इस संबंध जोड़ता है, इसी भाव से जोड़ता है कि उसके संकट कम हो जाए। किसी का संकट है अकेलेपन का, वो एक साथी ढूंढ रहा है कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। किसी का संकट है गरीबी का, किसी का संकट है असुरक्षा का, इनसिक्योर है। किसी का संकट है इमोशनली डिस्टर्ब है। किसी का क्या संकट है, किसी का क्या संकट है। और इसी संकट को दूर करने के लिए हम संसार में संबंध बनाते हैं। लेकिन जिससे संबंध बनाते हैं वो खुद इस संकट में है, है ना? वो कौन सा पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा? तो एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा होता है, और दोनों इस इल्यूजन में है कि नहीं ये भिखारी नहीं, ये धनवान है। दूसरा भिखारी सोचता है नहीं ये भी धनवान है, ये मेरी समस्या का समाधान कर देगा। तो असतपि, ये जो शेल्टर है ये कोई शेल्टर है ही नहीं। और जब क्राइसिस आता है, संकट आता है, तो सब एक्सपोज हो जाता है, कोई कुछ मदद नहीं कर पाता। उस समय उनका रोना धोना, उनकी अच्छी दुआएं, उनके बेस्ट विशेज सब बेकार, कोई यूजलेस, कोई काम के नहीं है। तो ये गजेंद्र का रियलाइजेशन है। लेकिन अगर हमने यही संसार में संबंध बनाए होते, इस रूप से नहीं कि ये मेरे मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करेगा, बल्कि इस इच्छा से कि ये कैसे मुझे भक्ति में आगे बढ़ाएगा। जब भी हम कोई संबंध बनाने जा रहे हो, एक युवा युवती की तलाश में हो पत्नी के रूप में, एक युवती पति को ढूंढ रही हो, एक कोई भक्त एक मित्र को ढूंढ रहा हो, तो जो भी हम संबंध बनाए तो संबंध के पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरी भक्ति में, मेरे गुरु और मिशन की सेवा में कैसे मदद करेगा। ना कि ये कि किसके साथ मुझे ज्यादा मनोरंजन मिलता है, किसके से याद मुझे ज्यादा यश मिलेगा, किससे ज्यादा भौतिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। ऐसे अगर इस भावना के साथ जो हमारे संबंध बनेंगे वो असतपि, वो कोई शरण प्रदान नहीं कर पाएंगे, और समय आने पे सब एक्सपोज हो जाएगा। ये गजेंद्र को एक्सपोज हुआ, तो इसलिए गजेंद्र के लिए जो परिस्थितियां बहुत ही निराशाजनक थी, हम में से कौन ऐसी परिस्थिति में होना चाहेगा कि मगरमच्छ ने उसको पकड़ा हुआ है, वो बिल्कुल एक तरह से कैदी है, या लिखो मैं पाशीर ने एकदम कैद में है और बहुत दर्द में है, बिल्कुल बल खत्म हो गया है, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं है। लेकिन ये निराशाजनक स्थिति बहुत आशाजनक बन गई जब उसने भगवान की शरण ग्रहण की, है ना? तो इसी कारण से हम देखते हैं कि गजेंद्र ने हमें सिखाया कि ऐसी परिस्थिति में हम भगवान की शरणागत कैसे हो। शरणागत का मतलब क्या है? ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, सरेंडर, इसके सुदामा प्रभु बोलते हैं सरेंडर मतलब सर अंदर, सरेंडर बड़ा शब्द है, माना सरेंडर हो जाओ आप, चलो हैंड्स अप सरेंडर, सरेंडर करना है। लेकिन सरेंडर है क्या? तो गजेंद्र सिखा रहे हैं, गजेंद्र सिखा रहे हैं कि सरेंडर यानी शरणागत होने का अर्थ है पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर रहना, पूर्ण रूप से। गजेंद्र भी यह सिखा रहे हैं कि शरणागत होने का अर्थ है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उनको पूरी आशा रहती है कि भगवान मुझ पर कृपा जरूर करेंगे। यह है शरणागत होने का मतलब। शरणागत होने का मतलब है कि यह जानना कि कृष्ण ही सब कार्यों के कारण है, कृष्ण ही परम नियंता है और कृष्ण मेरे सबसे प्रिय हितेशी है, यह शरणागत होना है। गजेंद्र ने बोल रहे हैं कि ग्राहेण पाशेन विधातु आवृतो, ये भाग्य ने, भाग्य के कारण मैं इस तरह से कैद हूं, घड़ियाल के द्वारा पकड़ा गया हूं। वो किसी को आरोप नहीं लगा रहा, ये भाग्य है और इसको वो स्वीकार कर रहा है, इस परिस्थिति को वो स्वीकार कर रहा है कि भाग्य ने ये मुझे ऐसा दिया है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। क्यों? जो भी हुआ है भगवान के अनुमोदन से हुआ है। हम सोचते हैं कि कृष्ण सब कारणों के कारण नहीं है, उन्हीं कारणों के कारण है जो मेरे लिए सुखमय परिस्थितियां हैं, और ये जो बाकी चीजें होनी है पता नहीं कृष्ण ठीक क्यों नहीं कर रहे, ये परिस्थिति स्वीकार कर रहा हूं मैं, ये भाग्य ने मुझे प्रदान की है इसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि कृष्ण सब कारणों के कारण है, उन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। संसार में एक भी ऐसा अणु नहीं है जो उनसे स्वतंत्र है, तो फिर कैसे होगा। तो इस ढंग से यह है शरणागत के लक्षण होना, और जब पूर्ण रूप से हम शरणागत हो जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। चिंताएं भी हम देखते हैं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो भौतिक चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, अपने शरीर की बीमारी की चिंता, अपने परिवार वालों की चिंता, ये तो भौतिक चिंताएं हैं। इन चिंताओं से ये हमें बहुत दुख देती हैं और हमेशा हमें भ्रम में रखती हैं। लेकिन आध्यात्मिक चिंता रखना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रिविलेज है। आध्यात्मिक चिंता क्या, कि हमेशा ये चिंता करना कैसे मैं अपनी सेवा को इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे मैं अपने जप को अच्छा कर सकता हूं, कैसे मैं भक्तों से संबंध इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे मैं अपने अनर्थों से छुटकारा पा सकता हूं, ये आध्यात्मिक चिंता है, इसको रखना हमारे लिए लाभप्रद है। और भौतिक चिंताएं रखना हमारे लिए कष्टदायक भी है और हमारे को हमेशा भ्रम में भी रखेगा। तो जब तक गजेंद्र यह सोच रहा था कि वो नियंता है, वो तो महाराजा है इस जंगल का, और फिर उसको जब घड़ियाल ने पकड़ा तो वो 1000 वर्ष तक बहुत चिंता में रहा। जब उसको लग गया कि नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की परिस्थितियां हैं, अब तो मुझे केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, उसकी सारी की सारी चिंताएं समाप्त हो गए। तो हम देख सकते हैं अपनी परिस्थिति में, आप सबको भक्तों का अनुभव होगा कि जैसे ही हम ये निर्धारित करते हैं कि अब मुझे पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में जाना है, हम सब प्रकार की भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और जब तक हम अपने वो कर्ता समझ के संघर्ष करते रहते हैं, ये चिंताओं से हम ग्रसित रहते हैं। तो ये जो परिस्थिति थी ये गजेंद्र के लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली परिस्थिति बन गई, है ना। ऐसी विषम परिस्थिति भी उसके लिए सौभाग्यशाली परिस्थिति बन गई। पुराणों में एक श्लोक आता है, महाविपत्ते संसारे या स्मरित मधुसूदना, विपत्ति तस्य संपत्ति आह यह शंकर। महाविपत्ते संसारे, इतनी बड़ी विपत्ति आई या स्मरित मधुसूदना, जो इस बड़ी विपत्ति में भी अगर कोई कृष्ण का स्मरण कर सके, विपत्ति तस्य संपत्ति भवे, उसकी जो ये विपत्ति है उसकी संपत्ति बन जाती है, उसका एसेट बन जाता है, वाह, उसका फॉर्च्यून बन जाता है, ऐसा भगवान शंकर बता रहे हैं। इसके लिए बहुत फॉर्चुनेट सिचुएशन थी, घड़ियाल ने उनको जकड़ा हुआ है, लेकिन गजेंद्र को भगवान का स्मरण हो गया, कितनी अच्छी बात है। और हम देखते हैं इन गजेंद्र को हाथी की योनि कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि इनको श्राप मिला था। अब देखा जाए कहां राजा इंद्रद्युम्न एक परम वैष्णव थे, कहां हाथी की योनि, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। लेकिन भगवान सब जानते हैं, भूतकाल वर्तमान और भविष्य। तभी ये कृष्ण की योजना थी कि राजा इंद्रद्युम्न ऐसी परिस्थिति में आए, फिर वो घड़ियाल के जंगल चुंगल में फंसे, और फिर इससे वो मुक्ति का ये द्वार बनेगा ये परिस्थिति। तो ये सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली स्थिति है। और हम देखते हैं कि कोई अगर भक्त बहुत गंभीरता से भगवान की शरण लेना चाहता है और इसके लिए प्रयास कर रहा है, तो कृष्ण वास्तव में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिससे वो भगवान की शरण ग्रहण कर सके। हम देखते हैं, हम अपने भक्ति में जीवन में देख सकते हैं कि जब शुरू शुरू में भक्त जुड़ता है तो उसकी इच्छा होती है मैं दीक्षा लूं, है ना, तो वो प्रार्थना करता है कैसे दीक्षा लूं, किससे दीक्षा लूं, तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं उसकी दीक्षा भी हो जाती है। फिर आप भक्त में और आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि कुछ सेवा बने, तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि भक्तों के सामने वो सेवा करना भी शुरू करता है। जैसे जैसे वो अपना शरणागत बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे वैसे भगवान वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करते रहते हैं कि हमारा शरणागत हमें बढ़ाना पड़े। श्री प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज जी का यह आदेश था, कि जब भी आपको धन प्राप्त हो तो उसके छापे और उसका वितरण करें। प्रभुपाद ने सोचा कि पहले मैं खूब धन कमा लूं और फिर मैं ऐसा कार्य करूंगा, लेकिन प्रभुपाद जहां बिजनेस में हाथ डालते थे भगवान की योजना थी बिजनेस फेल। और फिर जब प्रभुपाद एक जगह झांसी में लेक्चर दे रहे थे, खबर आई कि पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ चौपट हो गया। तब प्रभुपाद ने क्या बोला, यस्याह अनुग्रह हरिष्ये धनोशनाय, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उस कृपा की पहली इंस्टॉलमेंट है। ये तो भाई पहली इंस्टॉलमेंट है कि उसका सब कुछ हर लिया जाता है। भगवान बता देते हैं कि मेरा नाम हरि क्यों है। गोपियां भी भगवान को यह बोलते हैं कि आपका नाम हरि है क्योंकि आप हमारे संकट हर लेते हो। और संकट क्या है, संकट किसके कारण है, ये सारे धन और ऐश्वर्य के कारण। क्योंकि जब जब ये हमारे पास रहता है हम पूर्ण रूप से अनकिंचन नहीं हो जाते, हमें इन पे झूठा विश्वास रहता है कि ये हमें शरण प्रदान करेंगे और ये हमें रोकते हैं पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होने के लिए। इसलिए आप हरि हैं और ये पहली इंस्टॉलमेंट है। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, बोले समझिए अब कौन सी योजना है भगवान की, है ना। तो प्रभुपाद अपनी प्लानिंग से चल रहे थे और सारे उनके प्लान फेल हो रहे थे। प्रभुपाद जी के साथ ऐसा हुआ, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के साथ भी ऐसा किया। गाड़ी से शक्ति यदि किसी को बता रहे थे चलो सेंटर खोलो, है? सेंटर खोलो। गुरुदास प्रभु आ रहे थे अमृतसर से प्रभुपाद के साथ बैठे हुए और अकेले वो ही थे कंपार्टमेंट में प्रभुपाद, और वो उनको लग रहा था कितना अच्छा गुरु का संग मिल रहा है, गुरु की सेवा मिल रही है, वाह कितना मैं सौभाग्यशाली हूं, बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली स्टेशन में गाड़ी रुकी, एक व्यक्ति आए, प्रभुपाद ने हिंदी में उनसे बात की, गुरुदास जी को कुछ पता ही नहीं क्या था, बातें चलती रही, वही कुछ बोला चलो नीचे क्या नीचे उतरो आप इनको ही विल हेल्प यू इन ओपनिंग ए सेंटर। ओके प्रभुपाद कुछ तो दो बताओ कहां जाना है क्या करना है। नहीं बस आप ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, पूर्ण रूप से शतानत हो जाएगा। आप सोचिए एक विदेशी व्यक्ति अमेरिकन और वो रह रहा है चांदनी चौक जैसे एरिया में, वहां जाके सारा संघर्ष कर रहे, कुछ नहीं पता क्या करना है, सेंटर खोलना है। और आज प्रभुपाद ने उनको उतारा था इतने साल पहले, और आज आप दिल्ली देखिए दिल्ली में कितने मंदिर है, कितना प्रचार है, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से उनको शरणागत होना पड़ा। तो गुरु और कृष्ण एक सिंसियर भक्त के जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाएंगे कि उसको पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि हम अभी हृदय से नहीं चाहते कि हम शरणागत हों, और हमारे जो आश्रय हैं ये सब टेम्परेरी वस्तुएं हैं, देह आप्तकला विदेशु, इन पे हम निर्भर रह रहे हैं। अगर हम चाहेंगे कि नहीं मैं अब जीवन में शरण ले सकूं, क्योंकि बिना कृष्ण की एकमात्र शरण लिए संबंध स्थापित नहीं हो सकता। ऐसा संभव नहीं है कि मेरी शरण बटी हो और मेरा कृष्ण से संबंध भी स्थापित हो जाए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी लिखते हैं कॉमेंट्री में, कृष्णा इज ए ट्रांसडेंटल और एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। ट्रांसडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर, खाली मेरे से संबंध होना चाहिए और किसी से नहीं, व्यभिचार नहीं। तो इसी ढंग से आप देखते हैं कि अभी हम गए थे गोवर्धन के पीछे, तो वहां के एक इंचार्ज है असित कृष्ण प्रभु, वो संन्यास की लिस्ट पे है। तो जब कोई व्यक्ति इसको हमें कोई संन्यास के लिए अप्लाई करता है तो बहुत लंबे दौर से बहुत उसका टेस्ट किया जाता है अलग अलग परिस्थितियों में। तो बोला आज उनका अगले साल में नंबर है, बोले क्या किया जा रहा है, अब उनको भेजा जा रहा है चाइना में, फिलीपींस में, ताइवान, हांगकांग में प्रचार के लिए। बोला कैसा अनुभव है, बोला प्रभु अब मालूम चल रहा है कि कृष्ण कौन है, क्या शरण लेनी चाहिए। बोले जाओ चाइना के एयरपोर्ट में, एक बार मुझे 3 घंटे के लिए बैठा दिया, ऐसे पैंट शर्ट में जाना पड़ता है, उसी मेरी पैंट शर्ट इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं, तो उनको लगा पता नहीं कहां से आ गया, बैठा दिया 3 घंटे के लिए, वेट करते रहो अकेले, और इतना हैरास किया मुझे। और यहां पे जाओ तो सब प्रणाम करते हैं, प्रभु जी कहते हैं, और वहां पे एक बैठो कोई इतना गंदा रहा मेरे से, कैसा लगा होगा। और एक महीने जब वहां रहना पड़ता है, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पता नहीं किस चीज में क्या हो, पानी पियो उसमें मछलियां हैं, कुछ है, कुछ समझ नहीं क्या करें। बोले 100 किलो से वजन 60 किलो आराम से हो जाता है, और कुछ कोई भक्त नहीं, कुछ नहीं, अकेले 1 महीने आपको संघर्ष करना है, तब केवल मैं और हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, ये है। ऐसी परिस्थिति में हमें से कोई भी आना चाहेगा, हम डर के कांप जाएंगे, लेकिन जब हम वास्तव में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे शरण दो, क्योंकि बिना भगवान की शरण लिए संबंध बनेगा नहीं, बिना संबंध बने जीवन के आनंद से हम वंचित रहेंगे, और ये झूठे जो आश्रय है ये हमें प्रलोभन देते रहेंगे, और हम भी समझते हैं कि ऐसे ही कंफर्टेबल भक्ति चलती रहे इनके साथ ही, है ना, गजेंद्र की तरह। तो ये पुण्य सुकृति तक ठीक है, लेकिन एकांकित जो भक्ति चाहिए उसके लिए इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और भगवान फैसिलिटेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना करना बंद कर दें, नहीं भैया नहीं, शरणागत नहीं लेने, हम प्रार्थना करेंगे, भगवान फैसिलिटेट करते हैं। गजेंद्र को बुद्धि प्रदान की और गजेंद्र को प्रार्थना याद आई, और बिल्कुल असहाय अवस्था में जैसे बच्चा मां को पुकारता है चिल्ला चिल्ला के, उसी तरह से गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। और फिर गजेंद्र अगर अपनी प्रार्थना में बोलेंगे कि मैं कितना मूर्ख था, कि मैं समझता था कि मैं अकेले ही अपनी रक्षा कर लूंगा, मुझे तो पूर्ण रूप से आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस ढंग से आज के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान की शरण हमें क्यों ग्रहण करनी चाहिए, कैसे ग्रहण करनी चाहिए, और इस संसार के जो तथाकथित आश्रय हैं वो सब बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ा धोखा, और हमें एक गलत एक सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। वास्तव में वो आत्मसैनिशु असत, अभी वो खुद असत हैं, वो किसी प्रकार के हम संकट से हमें नहीं बचा सकते, और असली संकट जब मृत्यु का संकट आता है तो हम भगवान और भगवान के भक्तों की शरण हमें बचा सकती है। जिस परिवार में कृष्ण केंद्र में है और जो भक्तों के बीच में, जिन भक्तों से संबंध कृष्ण भानाभावित होकर, अगर संबंध की संबंधों का आधार कृष्ण भानाभावित है, तो ऐसे में मृत्यु के समय सभी संबंधी, सभी हमारे मित्र हमें मदद करते हैं कृष्ण के स्मरण में, वो हमें याद दिलाएंगे, उनमें स्थिति ऐसी नहीं होगी, तब हमारे सारे मित्र सगे संबंधी हमें असली आश्रय प्रदान करेंगे। लेकिन अगर हमारे संबंधों का आधार अपने असुरक्षा, अपनी भय को दूर करना है, तो हमें बहुत बड़ी हमें निराशा हाथ में लगेगी। इसलिए हमें अपने संबंधों का आधार भी देखना चाहिए कि वो आधार कृष्णा भानामृत है। घर में पति पत्नी का संबंध, ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी के एक दूसरे के साथ संबंध, गृहस्थ और ब्रह्मचारियों का संबंध, सारे संबंधों का आधार कृष्णा भानामृत में, कि कैसे हम एक दूसरे का संग करके एक दूसरे को हम स्मरण कराएंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो वो जो आश्रय है वो असली आश्रय है। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या टिप्पणी? निश्चित रूप से इसमें हम इस कथा से ये भी सीख सकते हैं कि जब इंद्रद्युम्न सही परिस्थिति में था, मनुष्य योनि में था, सब कुछ ठीक था, उन्होंने अच्छे ढंग से प्रार्थना की, सीखी, प्रैक्टिस की, और तब संकट का जब समय आया तो उसको याद कर पाए। तो जब हम अभी हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है और हम चल फिर सकते हैं, याद कर सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जितना स्पष्ट रूप से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे उतने ही चांसेस हैं कि मृत्यु के समय हमारी जीवा से ये मंत्र निकलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मैं पूछना चाहता था भैया कि जैसे गजेंद्र का बिल्कुल अंतिम घड़ी थी जब उसने भगवान की पूरी शरण ली, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब तो और कोई चांस नहीं है, तो लेकिन हम अपने नॉर्मल व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि जब ऐसे कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं, डिस्टर्बिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियसनेस को ओवर पावर कर लेते हैं, जिससे हम भगवान की शरण नहीं ले पाते, या फिर वो बाधा बन जाते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स, या जैसे अगर किसी भक्त के जीवन में कुछ ऐसा अनफोर्सीन या ऐसा सरकमस्टांस ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट हो, तो उसका जो है वो भक्ति में इंटरेस्ट भी और कम हो जाता है या उसको और शरण लेने में और मुश्किल आती है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं उस समय में या डे टू डे डिस्टर्बेंसेज में हम अपना शेल्टर और कैसे बढ़ा सकते हैं।
अच्छा प्रश्न है, देखा कि भक्तों के जीवन जब कष्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से दूर हो जाते हैं, तो उसमें जो मैं समझ पाया हूं कि हम लोगों में कमी है कि हम अभी भी उम्मीद रखते हैं संसार में सुख पाने की, और हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो इसका मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अभी तक एक प्रश्न का उत्तर है, बहुत सेमिनार दे दिए हमने लेकिन हमारे जीवन में, क्योंकि मैं अपने को अच्छा समझता था और थोड़ा सा पूरा हुआ तो मैं मिश्रित हो गया, है ना। तो ये है, मुझे खुद को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बुरा होता ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो, तो क्योंकि हम प्रभा लिख रहे हैं वास्तविक ज्ञान ये है कि जानना कि संसार में सुख नहीं है, तो ये सब भौतिक परिस्थितियां हैं, किसी भी प्रकार की भौतिक संकट मुझे नहीं रोक सकता कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप ना करूं। हम देखते हैं इसके मोहन प्रभु का विषय भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आवाज नहीं निकल रही थी, प्रभा जी आराम प्रभु जी आराम से चैंटिंग करते रहे और धीरे धीरे आवाज आ गई फिर ठीक है, और 3 साल पहले तो पूरा मैराथन उन्होंने किया था बंद गले के साथ। तो लाइव एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है कि खाली किताबी बातें हैं। जितामित प्रभु के नी का ऑपरेशन हुआ, पूरे पूरे बेड के साथ आए मंगल आरती के लिए, मंगल आरती मिस नहीं करते, स्ट्रेचर के ऊपर आए मंगल आरती करने, हॉस्पिटल से 4:30 निकलता था, 4:30 निकलता था 4:30 टेम्पल हॉल में विद स्ट्रेचर, ही यूज्ड टू कम फ्रॉम मंगल आरती, इस होली जब तक भाई महाराज जी को देख रहे हैं, है ना। तो ये निर्भर करता है कैसे हमने अपने को ट्रेन किया है, कितना हमने ज्ञान प्राप्त किया, कितनी कृपा हमें मिली है, चैलेंज कर रहे हैं अगर भगवान को, इसका मतलब हमें पूरा श्रद्धा नहीं है। किसी भक्त के हृदय में किसी प्रकार की असुरक्षा, किसी प्रकार का डर दिखाता है कि श्रद्धा में कमी है, इसका मतलब हमें और अपनी श्रद्धा को पक्का करना है और अच्छे ढंग से श्रवण और प्रार्थना करनी है ताकि हम सकें। नहीं नहीं कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, प्रभुपाद को याद करना पूर्ण रूप से कंप्लीट है। नहीं प्रभुपाद को भी आपने याद किया, बिकॉज प्रभुपाद पूर्ण रूप से भगवान के स्मरण में है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार भक्तों के साथ ऐसा होगा अंतिम समय उन्होंने प्रभुपाद को पुकारते हुए शरीर छोड़ा। ओके ठीक है, हम तो ये देख रहे हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि यहां तो फिर भी बताया जा रहा है कि परिवार के लोग, कलयुग में तो अब परिवार ही नहीं बचा झूठा आश्रय भी नहीं, तो स्थिति तो बहुत ही खराब है। तो एक तरीके से और अच्छी परिस्थिति है, फॉर्चुनेट दिखने में खराब है लेकिन देखने में और आशाजनक है कि अब तो कोई शरण है ही नहीं कोई भाई की शरण नहीं, माता पिता की शरण नहीं, सब इतना मतलबी और स्वार्थी वातावरण हो गया है अब तो, केवल बस नाते विदु स्वार्थ गति विष्णु, असली स्वार्थ क्या है कृष्ण के शरण में है। ठीक है, आप सब भक्तों में बहुत बहुत धन्यवाद, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि रश्मि बिंद की जय, ग्रंथ रश्मि भागवतम की जय, निताई गोटे आनंदे।